मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 28 जुलाई 2017 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारे पास मुख्य विषय के रूप में बात करने के लिए इंडियन पॉलिटी सिनेरियो है, लेकिन फिलहाल मैं उस विषय पर बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। आज मुख्य विषय के रूप में हम बात करेंगे अध्यादेश पर, जो लगातार टलता जा रहा है। तो इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, दो बातों पर पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा। पहले तो यह है कि कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं और इसके बाद फिर न्यूज। मित्रों, सूचना यह है कि आज शुक्रवार है, शनिवार और रविवार को गजेटेड हॉलीडे होता है और हम लोग उसी को फॉलो करते हैं, तो शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन शनिवार को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी। बाद में रविवार आता है तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ आप सबके लिए स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ होमवर्क जैसा भी आपको देते हैं। तो स्टडी मटेरियल के रूप में फ्रेंड्स, योजना के दो आर्टिकल्स होंगे, एक हिंदी का एक इंग्लिश का, और ठीक इसी तरह से कुरुक्षेत्र के दो आर्टिकल होंगे, एक हिंदी और एक इंग्लिश के आर्टिकल्स। जरूरी नहीं है कि ये चार आर्टिकल्स चार डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर हों, हो सकता है कि इंग्लिश का जो आर्टिकल है वो वही ट्रांसलेटेड फॉर्म में हिंदी का भी हो। जो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट मालूम पड़ता है उसे फिर मैं हम लोग दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, एक वीकली क्वेश्चन होता है, आप सब जो पुराने श्रोता हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, वो मेंस के पैटर्न का क्वेश्चन होता है और इसलिए आपको दिया जाता है ताकि आप प्रैक्टिस करके अपने आप को मेंस के लायक बना सके। और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट हैं फ्रेंड्स, उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, ये कुछ सूचनाएं थी। अब मैं आता हूं न्यूज पर। फ्रेंड्स, न्यूज आपने देखी होगी, सुनी भी होगी, मैं बार बार आप लोगों को जोर देता हूं कि प्लीज डीडी न्यूज आप लोग जरूर देखें, सुने, क्योंकि उसमें एक टॉपिक पर जिस तरीके से बात की जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छी बातचीत होती है। और केवल यही नहीं कि बहुत अच्छी बातचीत होती है, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि जो टॉपिक लिए जाते हैं वो सिविल सर्विस को बहुत सूट करते हैं। क्योंकि देखिए, डीडी जो है ना सरकारी माध्यम है, उसका रोचकता से कोई मतलब नहीं है कि भैया इसको ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर बनाना है, उसको इस वो यो कह लीजिए कि वो टीआरपी के रेस में नहीं है, है ना, कि उसको विज्ञापन से बहुत ज्यादा कमाई करनी है। वो तो एक पब्लिक ब्रॉडकास्ट मीडियम है, सरकार का माध्यम है, सरकार के अंतर्गत माध्यम है, हालांकि ठीक है वो स्वायत्त भी है और उसकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर के, राष्ट्रीय हितों को लेकर के। तो डेफिनेटली वो जिन विषयों को लेगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होंगे और राष्ट्रीय महत्व के विषय होंगे। साथ ही वो जिन लोगों से बातचीत भी करती है वो बहुत ही रेपुटेड लोग होते हैं, है ना, एक उनका अपना एक स्तर होता है बातचीत का। और तीसरी बात यह है कि वहां उस तरह से बहस नहीं होती जैसे दूसरे टीवी चैनल्स पर। आप देखिए, किसी भी इशू को उठाएंगे, इशू वो भी अच्छे उठाते हैं, लेकिन उस पर फिर ऐसी बहस होती है कि सुनने वाला कंफ्यूज्ड हो जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सुनने वाला क्या, हम क्या कंफ्यूज्ड होंगे। वो आपस में ही बहस करने वाले कंफ्यूज्ड हुए रहते हैं कि एक दूसरे की बात ही सुनाई नहीं देती उन लोगों को, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा काम के नहीं हो पाते, बावजूद इसके कि कोई कोई डिस्कशंस बहुत अच्छे भी होते हैं। लेकिन अब क्या कीजिएगा, उनका अपना पैटर्न है, दूरदर्शन का अपना पैटर्न है, लेकिन यह है कि दूरदर्शन का पैटर्न सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को बहुत सूट करता है, वो आपको जरूर सुनना देखना चाहिए। दो खबरें हैं फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट हैं, उन पर थोड़ा सा मैं तवज्जो चाहूंगा। पहला तो यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने रामेश्वरम में, जो अब्दुल कलाम साहब हमारे राष्ट्रपति रहे, उनकी जन्म उनकी जयंती पर उनके नाम से बने हुए राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन किया है। यानी ये न्यूज में आपने थोड़ा सा सुना भी, प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन भी सुना आपने उस मौके पर, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कहां वह स्मारक बनाया गया है, खासकर दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के दृष्टि से। सिविल सर्विस में इस तरह के प्रश्न तो नहीं पूछे जाते। एक बात जो मैं खासकर यहां मेंशन करना चाहूंगा, इससे आप कभी रेफरेंस में ला भी सकते हैं, वो ये मित्रों कि प्रधानमंत्री जी जब उद्घाटन करने के बाद राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, जब अपना भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने एक नई चीज जोड़ी और उसमें उन्होंने कहा कि जो इसको बनाने वाले जो कारीगर हैं उन कारीगरों को हम खड़े होकर अभिनंदन करें। ये बात उन्होंने कही। तालियां बजाकर अभिनंदन करें कि हमारे कारीगरों ने, मजदूरों ने इतने कम समय में इतना खूबसूरत विजनरी स्मारक खड़ा किया है। दोस्तों, मैं बहुत लंबे समय से प्रशासन में हूं, राजनीति को देख रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं, काफी कुछ समझता भी हूं, लेकिन मैंने ये चीज नहीं सुनी कि कोई मजदूर और कारीगरों के लिए स्टैंडिंग ओवेशन की बात किसी ने की हो, है ना। इंजीनियर्स को धन्यवाद दे दिया जाएगा, राज्य सरकार को धन्यवाद दे दिया जाएगा, लेकिन वहां से नीचे उतर कर मजदूर और कारीगरों की बात की जाए, और मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। ये एक सोच के बदलाव की ओर कहीं न कहीं संकेत करती है। दूसरी बात, ये कहीं न कहीं जो डिग्निटी ऑफ लेबर है, श्रम का जो महत्व है, उसको स्वीकार करने के लिए भी हमें प्रेरित करती है। तो आप इस तथ्य का उपयोग निबंध में कर सकते हैं, अपने फोर्थ जनरल स्टडीज का जो आपका फोर्थ पेपर है मेंस का, उसमें कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि रेफरेंस के साथ आप इसे नोट कर लें कि प्रधानमंत्री जी ने किस अवसर पर यह बात कही थी, तो फिर आपके आप जब लिखेंगे तो उसका वजन कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। मित्रों, इसके बाद जो दूसरी खबर है, जो हमारे आज के न्यूज की अंतिम खबर भी है, वो है बिहार में सरकार बन गई। आपने देखा कि 15 घंटे के अंदर अंदर तब्दीलियां हुई और नई सरकार बन गई। चीफ मिनिस्टर पहले वाले ही हैं, हमारे नीतीश कुमार जी, राइट। अब देश में एक बहस सी शुरू होगी और हो चुकी है। अब बहस क्या है मित्रों, देखिए, एक है लोकतांत्रिक सिद्धांत, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, लोक डेमोक्रेटिक थ्योरी, पैटर्न ऑफ गवर्नेंस, लोकतांत्रिक प्रणाली। लोकतांत्रिक प्रणाली क्या है कि बहुमत दल सरकार बनाएगी। अगर अकेले को बहुमत नहीं मिला है कोई बात नहीं, कई लोग मिलकर अगर बहुमत कर सकते हैं तो वो भी सरकार बनाएगी। तो आप उस दृष्टि से देखेंगे तो जो नीतीश कुमार जी की सरकार जो बनी है बिहार की, कतई गलत नहीं है, न तो अवैधानिक है, न अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब इस रूप को लेकर के उंगली नहीं उठाई जा सकती। अब देखिए कि वो गवर्नर के एक्शन को लेकर के कुछ बातें की जा रही हैं कि सर गवर्नर को चाहिए था कि वो सबसे बड़े दल के नेता को पहले आमंत्रित करे, और सबसे बड़े दल में लालू प्रसाद जी की पार्टी थी, उन्होंने लालू प्रसाद जी की पार्टी से पूछे बिना ही सीधे नीतीश कुमार जी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया और कहा कि दो दिन में आप अपना बहुमत सिद्ध कर दीजिए। वो ठीक है, लेकिन अगर गवर्नर से पूछेंगे आप राज्यपाल जी से, तो वो अपनी बात कहेंगे तार्किक रूप से कि भाई जो वो लिस्ट दे रहे हैं वो अपनी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट की लिस्ट दे रहे हैं, तो वो 243 में से 132 की लिस्ट दे रहे हैं, तो आधे से अधिक तो ये लिस्ट दे ही रहे हैं, तो मैं क्यों समय खराब करूं, राज्य को क्यों मुख्यमंत्री विहीन रहने दूं। मुझे भरोसा हुआ कि हाँ ये जो लिस्ट दे रहे हैं ये भरोसा करने लायक है, मैंने आमंत्रित कर दिया। वहां भी वो बिल्कुल सही है, मतलब लोकतांत्रिक प्रणाली की दृष्टि से कहीं कोई खामी नहीं है। तो फिर बहस क्या हो रही है, क्योंकि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। अब जो बहस हो रही है देखिए, या जो होगी वो होगी मूलतः नैतिकता के सिद्धांत को लेकर कि ठीक है, डेमोक्रेसी एक पैटर्न है, एक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें बहुमत का शासन होता है, राइट। लेकिन इसका एक नैतिक पक्ष भी है, लोकतंत्र की आत्मा क्या है। जब हम आत्मा पर जाएंगे, जैसे संविधान की आत्मा की हम बात करते हैं, तो लोकतंत्र की जब हम आत्मा पर जाएंगे तो वो चुनाव पर आधारित है, और जब चुनाव में कोई भी पार्टी जाती है तो जनता के सामने अपना एजेंडा रखती है, जिसे हम मैनिफेस्टो कहते हैं, अपना चुनावी घोषणा पत्र। उस चुनावी घोषणा पत्र में जो नीतीश कुमार जी की पार्टी थी वो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेट विरोध कर रही थी, सीधा विरोध कर रही थी, बहुत तीखे शब्दों में विरोध कर रही थी, और न केवल नीतीश जी और उनकी पार्टी के सदस्य ही विरोध कर रहे थे बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी विरोध कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी की, कांग्रेस की और लालू प्रसाद जी की पार्टी, ये तीनों ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, इनका विरोध कर रही थी। तो अब जनता ने उसी आधार पर मतदान किया था कि भाई उन्होंने सबकी बात सुनी और बात सुनने के बाद उसने फैसला किया कि अच्छा किसको वोट देना चाहिए, उन्होंने दे दिया। अब वो सारा मामला गड़बड़ हो गया, अब एक दूसरे का विरोध करने वाले मिलकर सरकार बना रहे, नैतिकता की दृष्टि से देखेंगे आप इसे तो, अब एक दूसरे का विरोध करने वाले सरकार बना रहे हैं। तो जनता ने जो विश्वास किया था, आपको लगेगा कि जनता के साथ तो कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, क्योंकि जनता तो आपके एजेंडा के हिसाब से देती है, आप जो भाषण देते हैं उसको सुनती है और उसके आधार पर अपना निर्णय स्थापित करती है, निर्णय लेती है। तो ये जनता ने क्या किया, तो मतलब राजनीतिक खेल हुआ, ये लोकतांत्रिक प्रणाली की आत्मा के अनुरूप नहीं हुआ। तो मित्रों ये दो एंगल मैंने आपको दिए हैं और आप इन दो एंगल पर विचार कीजिए। जो लोकतांत्रिक प्रणाली वाला जो एंगल है वह मूलतः संविधान है और जो अभी मैंने नैतिक उसका नैतिक पक्ष या उसकी आत्मा की जो बात की वो पॉलिटी है, राइट। तो मित्रों इसके बारे में इतना ही, अदरवाइज बात करने के लिए तो बहुत सी बातें हैं किंतु फिर ऑर्डिनेंस रह जाएगा और मुझे मालूम है कि फिर आप मुझ पर हमेशा वायदा तोड़ने का आरोप लगाएंगे कि हमेशा अपने वायदे को तोड़ देते हैं। तो दोस्तों अब आइए हम ऑर्डिनेंस पर आते हैं, अध्यादेश को लेकर। देखिए अध्यादेश के बारे में किताबों में लिखा हुआ है, आप जानते भी होंगे और आप उसे पढ़ भी सकते हैं, यानी उसे दोहराना मेरा पर्पज नहीं है। अगर मैं दोहराऊंगा ही तो मैं आपको कोई कुछ नया नहीं दे रहा हूं। मैं यहां दो तीन बातें आपके सामने खासकर रखना चाहूंगा। अध्यादेश का विषय हमने इसलिए चुना है क्योंकि राष्ट्रपति जी ने, हमारे जो निवर्तमान राष्ट्रपति हैं वो मतलब जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने विदाई के अपने सम्मान में ये बात कही थी, विदाई सम्मान जो हुआ था उसमें ये बात कही थी। उन्होंने उसमें तीन बातें कही थी। पहली बात तो यह कि जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस जब बहुत आवश्यक हो तभी जारी किए जाने चाहिए। आपको मालूम है दोस्तों कि ऑर्डिनेंस जारी करना सरकार के लिए सबसे आसान काम होता है। कैसे, मंत्रिमंडल निर्णय लेता है, उसे राष्ट्रपति के पास भेज देता है, राष्ट्रपति को उस पर साइन करने पड़ते हैं, अध्यादेश जारी हो जाता है। और अध्यादेश की बिल्कुल वही अहमियत है, याद रखिए, कि जो संसद द्वारा बनाए गए कानून की अहमियत है। फर्क इतना ही है कि जो संसद कानून बनाता है वो फिर जब तक उसे बदला ना जाए वो तब तक मौजूद रहेगा, मतलब उसकी उम्र बहुत लंबी होती है, उसे संसद ही बदल सकता है। लेकिन अध्यादेश की जो उम्र होती है वो कम होती है, 6 महीने होती है। इसके बाद फिर उसके प्रोविजंस है कि आप फिर से उसको बढ़ाना चाहते हैं तो संसद से अनुमति लीजिए, बला बला, तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन ये जरूरी भी है कानून व्यवस्था के लिए या राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप, ये आवश्यक भी है कि ऑर्डिनेंस की व्यवस्था की जाए, क्योंकि संसद हर समय सत्र में नहीं होती है कि आप संसद से ही कानून बनाएंगे। जब संसद से आप संसद में कानून बनवाने जाएंगे तो उसकी एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है, वो लंबा वक्त लगता है और आपको कानून की जरूरत अभी है, तो ऐसे में आप अध्यादेश ला सकते हैं। इसकी व्यवस्था भी इसी रूप में की गई है, तो ये उन्होंने बात कही। लेकिन हमारे यहां क्या हो रहा है कि शुरू से लेके, कोई अभी की बात नहीं है, अध्यादेश का दुरुपयोग हो रहा है। मतलब सरकार को लगता है कि नहीं, संसद से शायद पारित नहीं होगा, तो अध्यादेश का सहारा लेते 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 वो उस काम को करती रहती है। और याद रखिए कि जब मैं अध्यादेश की बात कर रहा हूं तो मैं केवल केंद्र की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें राज्य भी शामिल है, क्योंकि राज्य में भी, राज्यों को भी उस तरह से राज्यों में भी अध्यादेश लागू किए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा भी अध्यादेश जारी किए जाते हैं जो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है राज्य में। तो इससे जो लोकतंत्र की जो आत्मा है कि बहुमत निर्णय लेगा, और याद रखिए कि जब हम कहते हैं बहुमत निर्णय लेगा तो इसका मतलब यही होता है कि राष्ट्र निर्णय ले रहा है, और इसीलिए संसद बनाया गया है। क्योंकि बहुमत लोगों तक तो आप हर मामले में पहुंच नहीं सकते, तो व्यवस्था की गई कि लोग पहले अपने प्रतिनिधि चुने और प्रतिनिधि एक जगह पर बैठे, जिसे हम संसद कहते हैं। जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। वो विधानसभा में और संसद में बैठे, लोकसभा में बैठे, राज्यसभा में बैठे, विधान परिषद में बैठे, और वहां से फिर वो निर्णय ले कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यदि हम अध्यादेश से शासन चलाने लगेंगे तो अब आप देखिए कि वो जो प्रतिनिधात्मक जो प्रणाली है, जो लोकतंत्र की प्रणाली है, वो निरस्त हो रही है, क्योंकि ये तो कैबिनेट के द्वारा लिया गया निर्णय। अध्यादेश क्या है, अलग तरीके का एक आदेश है, एक तरीके से आप कह लीजिए, इसको आप डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं, एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया निर्णय भी कह सकते हैं, राजतंत्र का स्वरूप भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें लोगों की सहमति नहीं है। ये बात अलग है कि जब वो संसद में लाया जाए तो लोग उसे सहमति दे दें, या वो आवश्यक भी था, बात उसकी नहीं है, बात मैं केवल आपको स्वरूप की बता रहा हूं। तो दो बातें उन्होंने फिर और कही है कि अगर कोई समिति में अगर कोई मामला चल रहा है तो उस पर अध्यादेश जारी नहीं करना चाहिए। देखिए समिति जो है, संसदीय समिति के चैप्टर को आपको पढ़ना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो संसदीय समितियां होती हैं इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही मेंबर सदस्य होते हैं संसदीय समितियों में। तो मान लीजिए कि किसी भी इश्यू पर संसदीय समिति विचार कर रही है, इसका मतलब है हमारे राष्ट्र के प्रतिनिधि उस पर विचार कर रहे हैं, और यही हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है। तो अगर कोई मामला संसदीय समिति में चल रहा है और आपने उस पर अध्यादेश जारी कर दिया तो इसका मतलब है कि वो संसदीय समिति को निरस्त कर दिया। सीधी सी बात है कि एक जो लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जो पूरे देश का जो निर्णय हो सकता था उसको एक व्यक्ति के निर्णय में तब्दील कर दिया। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसे में जारी नहीं करना चाहिए, इससे लोकतंत्र पर से लोगों का विश्वास उठता है कि भाई समिति उस पर विचार कर रही है ना, कोई आयोग विचार नहीं कर रहा है। देखिए आयोग और समिति में बहुत, संसदीय समिति में तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिन्हें हमने चुना है, आयोग तो हो सकता है कि कोई जस्टिस उसके हेड हो या कोई विद्वान हेड हो, उस विषय के एक्सपर्ट उसके हेड हो, तो वो उतना ज्यादा महत्व नहीं रखता। लेकिन संसदीय समिति की अपनी एक सेंटिटी है, एक राष्ट्रीय सेंटिटी है, क्योंकि वो सदन से जुड़ा हुआ है, वो संसद और विधानसभा से जुड़ा हुआ है। तीसरी बात उन्होंने फाइनेंस के मामलों में कही कि वित्तीय मामलों में अध्यादेश जारी नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि जो वित्तीय मामले होते हैं दोस्तों वो बहुत ही पवित्र मामले माने जाते हैं। मतलब सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सरकार बिना संसद की स्वीकृति के, लोकसभा की स्वीकृति के, कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकती। और अगर हम कोई ऐसा अध्यादेश जारी करते हैं जहां पैसे का मामला जुड़ा हुआ है तो फिर हम एक तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना कर रहे हैं, और सीधे सीधे आप यूं कह लीजिए कि संसद की जो लोक जो आत्मा है कहीं न कहीं उसको दरकिनार कर रहे हैं। तो ये उन्होंने तीन पॉइंट दिए हैं। और अगर याद रखिए कि सिविल सर्विस में कॉन्स्टिट्यूशन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलिटी पर पूछा जाता है, जिस भी इश्यू पर प्रश्न पूछा जाएगा मान करके चलिए कि उसका कोई ना कोई रेलिवेंस, कोई ना कोई संबंध करंट अफेयर्स से होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अगर अध्यादेश पर कोई प्रश्न पूछा गया जो अक्टूबर में एग्जाम होने हैं तो आप देखेंगे कि वो इसी के इर्द गिर्द बुना जाएगा, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न बनाते समय वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसकी प्रासंगिकता क्या है। सीधे सीधे किताबी प्रश्न सिविल सर्विस में आने बंद हो गए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य विषय के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जितना भी वक्त था उस वक्त का इस्तेमाल करने की मैंने यथासंभव कोशिश की है। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। आज मैं आपको दो क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं और इत्तफाक ऐसी है कि दोनों क्लिपिंग्स एक ही विषय से संबंधित है और एक ही साथ मुझे मिले हैं, और वो है हमारे यहां टाइम जोन को लेकर। हमारे यहां एक टाइम जोन है 82.5 डिग्री देशांतर पर, और मैंने एक आपको मेंस के लिए प्रैक्टिस के लिए जो मैं वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं उसमें मैंने 2 टाइम जोन के ऊपर प्रश्न पूछा था, राइट। आज उसी से रिलेटेड 2 आर्टिकल हैं, आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आप शायद और अपने को उत्तर देने की स्थिति में पाए, या आपने अगर अपना उत्तर लिख लिया होगा तो अच्छा होगा कि आप इसके आधार पर उसे चेक कर लें, अपने ही लिखे प्रश्न उत्तर को, और फिर उसे अपडेट कर लें। तो वह है मित्रों, और एक कल आपको ध्यान होगा कि मैंने पीपीपी मॉडल और बीओटी बिल्ट ऑपरेट और ट्रांसफर के बारे में बात की थी। आज देखेंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बहुत ही प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर ने उसी पर एक एडिटोरियल कमेंट लिखा है, वह मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और ठीक इसी तरह से बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी उसी को आधार बना करके एक छोटा सा आर्टिकल लिखा है। तो दोस्तों इसके अतिरिक्त भी दूसरे आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स हैं, आप अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देख लेंगे। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं अपने अंतिम चरण पर, जो नौजवान साथियों के स्वागत करने का चरण है। और मित्रों मैं अब स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी के अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं विनय कुमार कन्नौज उत्तर प्रदेश से, पल्लवी कुमारी पटना बिहार से, और रवि कुमार गोयल भिवानी हरियाणा से। तो आप 3 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। हाँ मित्रों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह कि कल प्री के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, और मुझे जो अभी मेरे पास जो मेल आ रहे हैं और जो फोन और व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं तो मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनमें से कुछ ने सफलता हासिल की है, और अभी मेरे पास पूरी सूचना नहीं आ पाई है। तो पहली बात तो यह है कि मैं अपने क्लास के सफल स्टूडेंट्स सभी स्टूडेंट्स को, जिनकी सूचना हमारे पास है या नहीं भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आगे की सफलताओं के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं, और साथ ही जो भी स्टूडेंट इस प्री में सफल हुए हैं, जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है, डजंट मैटर कि वो हमारे क्लास स्टूडेंट रहे हैं या नहीं रहे हैं, उन सबको एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूंगा इन उनकी सफलता के लिए। और साथ ही ईश्वर से हम सब प्रार्थना भी करना चाहेंगे, करते हैं कि वे आगे के दोनों स्टेजेज में, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा करें और सफल हों। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब एक घोषणा यह कि अब दो दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात होगी। आप सबसे अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।